हजारों लोगों का श्रद्धा दूर कर देते। साधारण तो ये ईर्ष्या से आता है, स्थूल रूप का ईर्ष्या। कैसा होता है? गोपाल चापल जैसा। श्रीवास ठाकुर के घर में जाके रात में खून डाला और क्या बोलते हैं, मांस कुमकुम ये वो सब चंडी पूजा का वस्तु रख के बुलाया, देखो देखो देखो, तो कुछ चीज हो तो एक्चुअली थोपना और पूजा दिखाना, देखो देखो प्रूफ। तो इसी तरह से इन लीलाओं में हम देखते हैं कि उन परिस्थितियों की, उन गोपाल चापल, गोपाल चक्रवर्ती, हरिदास ठाकुर जैसा है वैसा दोहरा रहे थे शास्त्र। उसने बोला ऐसा कैसा, तुम्हारा नाक काट दूंगा अगर गलत है तो सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से ईर्ष्या इस तरह से प्रकट होता है। और सूक्ष्म रूप से ईर्ष्या कैसा प्रकट होता है? किसी में दोष देखना। क्यों किसी में दोष देखने की आदत हमको बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि किसी में अगर दोष दिखाया तो उसको हमने थोड़ा नीचे लाया, लोगों के आंखों में उसको नीचे लाया, जो नीचे आया तो हम ऊपर हो गए। अगर हम नीचे और सब ऊपर हैं तो दो तरीका ऊपर जाने का, तुम सबसे ऊपर जाओ या सबको इतना नीचे लाओ कि तुम वहीं के वहीं ऊपर हो जाओगे। तो जनरली जब हम सुनते हैं कि किसी और का गुणगान हो रहा है, हमको सहन नहीं होता क्योंकि हम अपनी बुद्धि को बुद्धि से देखते हैं, तो उस व्यक्ति को खींचते हैं। कैसा खींचते हैं? हनुमान जी की लीला में हम देखते हैं सुरसा और वो उसके नाम सिम्मिका परछाई पकड़ के उसको खींचती थी नीचे। परछाई पकड़ लिया तो हनुमान जी जा नहीं पाए और उसको पकड़ के खींचने का सिद्धि था। ये सिद्धि सिम्मिका का कलयुग में सबको है, परछाई पकड़ना। परछाई मतलब उसका काला भाग। अगर सूरज पे खड़े हो गए तो हमारा सूरज के गिरता हुआ भाग और दूसरा भाग हर एक के जीवन में 100% मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो नेंटा पाचो तू जब नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, नहीं नहीं तू ऐसा नहीं, मैंने नहीं किया यार, सबूत करके दिखाता हूं। ठीक है, तू बचपन में तू नंगा घूमता था, बचपन में नंगा घूमा, हाँ फिर तो हुआ ना, कुछ ना कुछ करके खींचना नीचे। और ताकि मैं सही हूं, देखो मैं सही हूं। ये रामायण में इसका यही हो गया अपना कैकेयी का। और ये मंथरा जो थी परफेक्ट, मंथरा का खुद का इच्छा था, कुछ कुछ आसक्त था, आसक्ति था कि मैं जो सबसे सीनियर रानी है उसकी दासी हूं। एक तो दासी है, उसमें भी सीनियर रानी की दासी, देखो किस चीज से अहंकार हो सकता आदमी। मैं नौकरों का नौकर, किसका पर किस भी, बस बड़ा आदमी का नौकर हुआ है, बोले सीनियर रानी की दासी। तो अगर कौशल्या राम पद पर आ गए तो कौशल्या प्रमुख रानी बन जाएगी, क्योंकि हमेशा महाराज दशरथ कैकेयी के साथ रहते थे, बहुत सुंदरी थी वो, इसीलिए लक्ष्मण डांटता है वो कामुक और राजा दशरथ, हमेशा उनके साथ रहता था। कौशल्या के घर जाते भी नहीं थे वो, कई सालों से नहीं गए थे, और जब राम को बोला तब भी कैकेयी के पास आए बोलने के लिए, गुड न्यूज बोलने के लिए सबसे पहले कैकेयी के पास आए, तब तक वो मुंह लटकाए बैठी हुई थी कैकेयी के सुनकर, आई मीन मंथरा का सुनकर। तो उसने क्या किया, उसकी इच्छा थी कुछ, और उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए उसने फैक्ट्स बोला, गलती नहीं बोली वो, सही बोली वो। देखिए कभी कभी ये निंदक भी जो होते हैं, हमारी निंदा करने की प्रवृत्ति, हम लोग गलत नहीं बोलते, ते ऐसा केला सांगित लाना बगितला ना तू, हाँ तुम्हें पढ़ ऐक लाना। तो उसने बोला देखो दशरथ महाराज ने कैके महाराज को भेजा है क्या, इन्विटेशन भेजा है क्या? नहीं भेजा था, इन्विटेशन नहीं भेजा ना भरत को, समझ गया ना मैं झूठ बोली गया क्या? दूसरा एकाएक अनाउंस किया ना, एक महीने के बाद भी कर सकते थे, कल सुबह ही होगा, है कि नहीं? हाँ है। तो दो फैक्ट बताई और दो फैक्ट के बाद उसका तात्पर्य बोलने लगी जो उसका था, और इसीलिए इसको ना करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। और कई की क्योंकि हृदय खोल के सुनी, उसका मत जो बदल गया, विचार दुष्ट हो गए, इतना कठोर हृदय की हो गई। जानती थी राम से इतना प्रेम करती थी, पर वो प्रेम ढक गया और कठोर हृदय की होके अपने पति को भी, मतलब विधवा बनने बोली भर महाराज दशरथ बोले तू विधवा बनेगी, तू अगर राम को भेजेगी तो दो दिन में विधवा बनेगी। बन जाऊंगी, चलेगा। दो चीज कैकेयी जानती थी, मंथरा जानती थी। एक, कैकेयी की कमियां क्या है, और उसने फैक्ट्स भी दिया। एक खासियत होता है, अगर निंदक करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है तो सबसे पहले फैक्ट्स ढूंढते हैं हम लोग। देखो उसने किया ना, उसने किया ना, उसने किया, और सामने व्यक्ति का कमी क्या है, उसको क्या चाहिए। कैकेयी को चाहिए क्या, एक दशरथ की हमेशा प्रिय पत्नी बनी रहे, उसका डर था, उसका डर था कि मैं सबसे फेवरेट क्वीन, उसका आसक्ति था। तो कैकेयी की कमी को अच्छी तरह से जानती थी और ये दो फैक्ट्स लेकर उसको घुमाया, और धीरे धीरे बोल बोल के 50 बार सुनने से धीरे धीरे विश्वास होने लगता हमको। इसीलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कभी उन्होंने वचन लिया था जिंदगी में, कभी किसी का मुझे बुरा सुनना नहीं है, वो है तो वो और कृष्ण जाने। क्योंकि ये जो सारा पाप है फिर से आ सकता है, फिर से आने की संभावना है। कृपा हो गया है, महाप्रभु की कृपा मिल गई है, उद्धार हो गया है, पर अगर बार बार सुनते रहेंगे और किसी की निंदा भले करें नहीं, सोचने भी लगे, जो सोचते रहते हैं एक दिन तंग आके मुंह से आ जाता है, और जो मुंह से आता है तंग आने के बाद एक दिन कर ही बैठते हैं, मन ही मन सोचते हैं इसको मारना है, इसको मारने का, पर बोलते नहीं है, और एक दिन बहुत गुस्सा आ गया मारेंगे तेरे को पकड़, और एक दिन वो भी अगर ओवरफ्लो हो गया तो कान एक बजा भी देते। तो जो मन में सोचा धीरे धीरे वाणी में आती है, जो वाणी में कल क्रियाशील हो जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जगाई मधाई उधाई के बाद भी महाप्रभु कह रहे हैं निंदकों में चले जाए। और कितने सारे कथा है चैतन्य लीला में, एक तो ये आनंदमय कथा है पर साथ साथ में ये कथा क्यों दिए गए हैं, क्योंकि ये सारे गोपाल चापल की प्रवृत्ति, गोपाल चक्रवर्ती की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, करोड़ों जन्मों से पाल पोस के बड़ा किया इसको हमने। तो ये जब तक नहीं जाएगा, जड़ से नहीं निकालेंगे, वो गांधी जी के 3 बंदर है ना, बुरा नहीं सुनूंगा, बुरा नहीं देखूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा, अच्छी बात है पर कौन सा बुरा, इन चीजों के प्रति खास करके। भीष्म पितामह भी कहते हैं महाभारत में, कुछ हद तक कुछ चीजें देखना नहीं चाहिए हमको, देखे भी नहीं देखा, क्यों हो जाने भगवान जाने, क्यों बड़ा उसको बारे में बोलना क्यों, देखो ऐसा कर रहा हूं, देखो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, देखेंगे फिर बोलेंगे, सुनेंगे, सुनने में आनंद लेंगे। धीरे धीरे विष पी रहे हैं हम लोग, एक जगह से अमृत खा रहे हैं फिर विष पी रहे। यही महाप्रभु ने बोला अमोघ को, अमोघ जब निंदा करने लगा महाप्रभु का, प्रसाद के लिए बुलाए थे और इतना खाता है तुम लोग, महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे अच्छे से खिलाए खाए, और जब उसको कॉलरा हो गया मरने को आया तो महाप्रभु, क्योंकि वो बहुत प्रिय था, भक्तों को प्रिय था, इसीलिए महाप्रभु ने उसकी छाती पे हाथ रखा और बोला अमोघ, तो शुद्ध हो गया वो, भगवान के स्पर्श होने से शुद्ध हो गया वो। शुद्ध होने के बाद अमोघ को बोले तू ब्राह्मण है, अच्छे कुल में जन्म लिया है, अब तू विष क्यों पी रहा है। हर बार हम देखते हैं सुनते हैं कुछ कहते हैं विष पान कर रहे हैं, तो बोले तू विषपान क्यों करता है? अब जिस मुंह से तूने विषपान किया है अभी उसके विरुद्ध उसको, अगर अमृत जिसने विष खा लिया है उसके लिए अमृत पीना चाहिए, काउंट्रैक्ट। तो बोले जिस मुंह से तूने आज तक निंदा की सबकी, रामचंद्रपुरी जय भी वैसे ही थे, पहले व्यक्ति वैष्णव का, फिर गुरु का, फिर भगवान का भी, चैतन्य महाप्रभु का भी, तुम उनके लिए अब उसी मुंह से अब अमृत पी। अमृत पीने का मतलब क्या? हरि कथा अमृत, हरि नाम अमृत, और उन्हीं वैष्णवों का गुणगान कर। तो क्या होता है वो अमृत जैसे, भगवान के लिए अमृत है जब वैष्णव का गुणगान करते। गुणगान करना मतलब क्या? ऊपर ऊपर से नहीं, हृदय से। और हृदय से करना है तो सोचना पड़ता है इसमें क्या अच्छा है यार, देखना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ेगा कौन क्या अच्छा है इसमें। हमारी परिस्थिति ऐसी है, ढूंढ के कुछ तो अच्छा निकालना है। हाँ, बहुत पहले 20 साल पहले एक बार स्कूटर से मेरा वो फ्लास्क गिर गया था, उसने उठा के दिया था, एक अच्छा काम किया। इसीलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर कोई झगड़ता था एक दूसरे का तो दोनों के सामने खड़ा कर गुणगान करो, ये तो सबसे बड़ी तपस्या हुई। मुंह बंद करके रहो तो ज्यादा तपस्या नहीं है, सबसे बड़ा तपस्या उसका गुणगान करो। गुणगान प्रभु बोले काला देखो दुईर पात के कीर्तन कर सब जाऊ क निंदके। सो निंदक के पास जाएगा। फिर कहते हैं सुनिया प्रभुर वाक्य सभार उल्लास महानंदे होइला कीर्तन प्रकाश। नाचे प्रभु विश्वंभर नित्यानंद संगे वेढ़िया वैष्णव सब यशगान यशगाय रंगे। आपके लिए खुशखबरी है, अब 10 श्लोकों में खत्म कर देंगे। कथा बहुत लंबी है पर कहीं तो विश्राम देना है, नहीं देंगे तो फिर आप लोग घूर घूर के मुचुकुंदा जैसे दृष्टि होने के पहले जब आप प्रेम से देख रहे हो उसी समय समाप्त करना अच्छा है, कर देता हूं। नाचय अद्वैत जार लागी अवतार जहार कारणे होइला जगत उद्धार। कीर्तन करे सभे दिया कर ताली सभे करे ना नृत्य होए कुतूहली। प्रभु प्रति महानंदे कारो नाही भय प्रभु संगे कत लक्ष ठेला ठेली होय। अरे अरे रे क्या सौभाग्य। हाँ, कभी नित्यानंद के ऊपर गिर रहा है, कोई कोई महाप्रभु के ऊपर गिर रहा है, क्या आनंद। आप सोचो हरिदास ठाकुर इधर गिरा तो हरिदास ठाकुर, उधर गिरा तो नित्यानंद, इधर अद्वैताचार्य, इधर चैतन्य महाप्रभु। तो गिरो तो भी कोई समस्या नहीं, अभी हम लोग गिर गए तो फिर उठना मुश्किल है, फिर वहां गिरे तो भी सौभाग्य। ऐसा ढकला ढकली हो रहा है, ठेला ठेली। बंधु संगे देखे आई घरेर भीतरे वसिया भासाए आई आनंद सागरे। हाँ, आई आई मतलब इधर उनकी माता शची आई, मराठी में भी आई है, आई मतलब माँ, बंगाली में भी। सभे ही परमानंद देखिया प्रकाश कहार ना घुचे कृष्ण वेशेर उल्लास। जार अंग परोशिते रमा पाए भय से प्रभुर अंगे संगे मद्यप नचाय। लक्ष्मी देवी भी स्पर्श करने के लिए डरती है, उठाना है तो प्रभु प्रभु देर हो गया उठो। और ये लोग धक्का सीधा, मतलब वही काम चालू उनका, पहले भी करते थे दूसरे प्रकार के मदोन्नत और अभी वही कर रहे हैं, कैसा सौभाग्य। मध्यपेरे उद्धारिला चैतन्य गोसाई, वैष्णव निंदके कुंभी पाके दिला ठाई।
मध्यपी जगाई माधाईंचा श्री चैतन्य महाप्रभुने उद्धार केला, परंतु वैष्णवांची निंदा करणाऱ्यांना मात्र कुंभी पाक नामक नरकामध्ये पाठवले।
मतलब एक जगह उद्धार भी करते हैं और एक जगह दूसरों को कुंभी पाक भी भेजते हैं। मतलब किसको? जो सबसे प्रिय है उनको वैष्णव, उनके प्रति निंदा करते। तो इवन चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु इतने करुणामय, वो भी सहन नहीं करते। एक भक्त प्रवचन दे रहे थे, बोले वो पतित पावन है पर कपट पावन नहीं। पतित पावन है महाप्रभु, पतित पावन हेतु तव अवतार, पर कपटता नहीं सहन कर सकते। निंदा एना बाढ़े धर्म सबे पाप लाभ, एते के ना करे निंदा कोनो महाभाग।
निंदा करण्याने धर्माची वृद्धी होत नाही, केवळ पापच प्राप्त होते, म्हणून कोणीही महापुरुष निंदा करीत नाही।
ये एक चीज हमें सीखना है, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना है तो गांधी जी के तीन बंदर जैसे, कम से कम जहां तक वैष्णवों का सवाल आता है, ना हमें कुछ ऐसी चीजें देखनी है, ना हमें कुछ चीजें सुननी है, ना हमें कुछ ऐसी चीजें बोलनी है। प्रभु क्या करें, अभी मैनेजर है तो कभी कभी बोलना पड़ता है ना, किसी को देखना पड़ता है, देखे बिना कैसा पता चलेगा, आंख बंद करके जो भी होने तो मैनेजमेंट होगा तो तकलीफ हो जाएगा, समस्या है। वैष्णव समाज में ये मैनेजर बनना भी बहुत बड़ा समस्या है, लीडर बनना, इसको खुश किया तो वो संतुष्ट, उसको असंतुष्ट किया तो ये, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। खास करके कोई भी व्यक्ति ऐसे जो पदवी पे है या ऐसी एक सेवा है, हाँ कूपन लेने का सेवा, ऐसा देखना पड़ता है किसी को, वैष्णव को कहाँ है तेरा कूपन, क्योंकि उसको आज्ञा मिली है। पर इसीलिए थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए, बहुत अच्छा साधना चाहिए और हृदय में सेवा भाव चाहिए, तीनों जरूरत है। अगर साधना नहीं है तो फिर पुराने पुराने जो स्वभाव है करोड़ों जन्मों के, बहुत जल्दी आ जाता है। पर अभी हमको सिद्धांत मालूम है, सिद्धांत के आधार पर उसको अच्छा से हम लोग बैठा देते हैं उसको। मैं ऐसा नहीं हूं, पर क्या है, बोलना पड़ता है ना, वैष्णव मतलब जो अंदर से बाहर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बस। तो धीरे धीरे उसमें आनंद होने लगता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि साधना बहुत अच्छा होना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम, ताकि हमारी भावना सही रहे। साधना सही रहेगी तो भावना सही रहेगी, दास दासानुदास। और उस दास भाव से अगर मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी का मतलब क्या है, एक भक्त ने बहुत अच्छा बताया, बैलेंस बिटवीन करेज एंड कंसिडरेशन, बोल्डनेस एंड सेंसिटिविटी। अगर कुछ गलत हो रहा है तो कुछ करना पड़ेगा, वो क्या चाहिए, धड़स, क्या बोलते हैं, धैर्य, वो धैर्य चाहिए, वो धड़स चाहिए, नहीं कोई भी क्यों ना हो पर गलत है तो कुछ करना पड़ेगा, पर कंसिडरेशन किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम लोग ठीक चीज करते हैं पर सही तरीके से नहीं करते, वी डू द राइट थिंग बट नॉट इन अ राइट वे। महाराज राधाना स्वामी महाराज एक बार बोले, वैष्णविज्म इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग. तुम आप सही भी हो सकते हो, पर अगर उसको सही तरीके से नहीं किए तो भी. तो इसीलिए क्षुरस्य धारा, तलवार है, बहुत तेज तलवार है, शेविंग करने के लिए रेजर बहुत अच्छा है, जितना शार्प है उतना एक बार किया तो, एडवर्टाइजमेंट में दिखाते ना पूरा प्लेन, कभी होता ही नहीं है एक्चुअली ओरिजिनल, घिस घिस की फावड़ा जैसा मारना पड़ता. तो ब्रह्मचारियों को मालूम है कितनी समस्या होती है अगर रेजर ठीक नहीं है तो. जितना अच्छा रेजर तीक्ष्ण है अच्छा से शेविंग होता है, थोड़ा अगर लापरवाही हो गई तो अच्छा से काटता है. तो साधना अच्छी होनी चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए, और बाद में थोड़ा एक अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन पे कुछ कार्य करना चाहिए. नहीं तो भले हम सही चीज कर रहे हैं पर सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा महंगा पड़ सकता है, वो काफी महंगा पड़ सकता है. और उतना करने के लिए उतना तो नम्रता चाहिए, नहीं तो हमको लगता है मुझे मालूम है, मैं एग्जैक्टली मालूम है क्या करना है. तो इस तरह से महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं इतनी बड़े विचार के बाद फिर से एक वार्निंग देते हैं. शास्त्र कितना परफेक्ट बैलेंस है, मतलब बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलता है या डराता भी नहीं है. इट गिव्स यू होप बट साइमल्टेनियसली वॉर्न्स यू. सब आशा है, ये सब कर सकते हो, पर ये चीज करो अच्छा है, ये चीज से बचो. तो दोनों जरूरी है. सर्वे विधि निषेध या स्यु ये तयोरे वकिंकरा, विधि और निषेध, किस चीज से बच के रहो, किस चीज को हमेशा करो, नियम बना लो, किस चीज से हमेशा भूल जाओ उसको, हमेशा छोड़ दो, कभी छोड़ मतलब सोचो ही मत. ऐसे रहेंगे तो फिर पूरा लाभ ले सकते. दुई दस्य दुई महाभागवत करी गण सहे नाचे प्रभु गौरांग श्रीहरि. तो कथा बहुत लंबी है पर एक एक ऐसा प्रसंग आया जहां समाप्त कर सकते हैं. कुछ जगह जैसा स्टेशन में बीच बीच में आता है एक ऐसा एक बीच बीच का छोटा स्टेशन आता है, बड़े स्टेशन से पहले छोटे स्टेशन आते हैं जहां रुक सकते चाहे तो, बीच में थोड़ा चाय कॉफी वड़ा पाव लेने के लिए. बम्बई से पुणे जाते वक्त लोनावाला एक स्टॉप, तो ऐसा एक लोनावाला स्टॉप आ गया इधर. यहाँ कथा समाप्त करते हैं. शाम को दूसरा बहुत सुंदर भाग है जहाँ नित्यानंद प्रभु का महिमा वर्णन हुआ है. तो इस तरह यहाँ कुछ चीज़ें उभर आती है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा है क्या, इसकी महिमा है क्या. शास्त्रोक्त तरीके से हम देखते हैं कि ऐसा कृपा दूसरे अवतार ने कभी नहीं दिया, कोई भी अवतार ने नहीं दिया ऐसा अवतार, ऐसा कृपा. ये परम करुणा बहु दुई जना, परम सब अवतार सार शिरोमणि, उसका सार लिए हुए इधर केवल आनंद कंद. तो इस तरह से महाप्रभु का गुण, नित्यानंद प्रभु के गुण कथा श्रवण करके, लीला श्रवण करके उसमें से गुण निकालना, और उस गुण इतने अच्छे गुण हैं, कोई भी सद्गुण वाला व्यक्ति सामने मिलता है तो उसे प्रेम करना बहुत आसान है कि नहीं. अगर एक व्यक्ति है देखने में बहुत सुंदर है पर थोड़ा संशय रहता है, पता नहीं कैसा व्यक्ति है, देखने में हर एक व्यक्ति सुंदर हो सकता है, परिचय होने के बाद जितना परिचय होता है जितना हम उसे देखते हैं और उसका कार्यकलाप देखते हैं तो उसके गुण समझ में आते हैं, तब धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है. तो अभी हमने सुना है चैतन्य महाप्रभु बड़े अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु कलयुग के अवतार हैं, ठीक है, पर तो सिर्फ नाम सुना है या फोटो देखा है पर जब उनकी लीला सुनते हैं सही भाव से सही तरीके से और थोड़ा गहराई में प्रवेश करते हैं तब हम देखते हैं हो गुण से उत्पन्न होती है लीलाएं, उनके कार्य देख के उनके गुण समझ में आते हैं ना। जैसा मैं जा रहा हूं सड़क पे, मेरे पास पैसा है और एक भिखारी आके भीख मांगता है, तुरंत एक पैसा निकाल के देता है, तो हमको क्या लगता है, थोड़ा दयालु व्यक्ति आदमी, और सब लोग घूम जाते हो उस तरफ देखते भी नहीं है। तो उसमें थोड़ा समझ में आता है, उसके कार्य से उसके हृदय में का एक झलक मिलता है। ओ दोनों बुरा हो या ठीक हो, कार्य से गुण समझ में आता है। तो कार्य सुनते रहेंगे ध्यान से तो उनके गुण समझ में आएंगे, और गुण समझ में आएगा तो स्वाभाविक रूप से आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और आध्यात्मिक प्रगति निश्चित है, जैसे प्रभुपाद कहते। तो ऐसे दिनों में, पवित्र दिनों में जब खास कृपा उपलब्ध है, उस समय थोड़ी बहुत तपस्या है, थोड़ा बहुत फास्टिंग करना। फास्टिंग का मतलब क्या, बेसिकली फास्टिंग करने से भी सोचना पड़ता है, भी खाना जाना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा ध्यान उधर जाता है, समय जाता है। तो कम से कम समय, क्यों एकादशी के दिन हम लोग बोलते हैं खाना कम, शेविंग नहीं करना, वो नहीं करना, जो शरीर के काम, शरीर की जरूरतें उसको थोड़ा कम करके, कम रहेगा तो निश्चित है टाइम बच गया उतना, और मन भी उधर उधर नहीं जाता, क्योंकि मालूम है आज कुछ खाने का नहीं, पकाने का तो है ही नहीं, वो एक ही दिन होता है साल में अगर हम उसको मनाएं तो, वो है अपना एक निर्जल एकादशी। उसमें चिंता ज्यादा नहीं होता, क्यों चिंता नहीं होता, क्योंकि मालूम है आज पूरा खाना है ही नहीं। विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं जो समझ ही लिया मेरे को भोग नहीं करना है, उसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा है। जैसे एकादशी के दिन भी अगर स्वीट राइस सामने रखा हो तो खाते नहीं हम लोग, मालूम है मतलब आज तो नहीं, अभी कल ही बस। तो इस तरह से जिस हद तक हमको समझ में आ गया कि नहीं करना, निश्चिंत रहेंगे उस दिन, और उस निश्चिंत समय जो मिला या मन एकाग्र है, उसको अगर कृष्ण स्मरण में लगाएं और अच्छी तरह से मनाएं, उत्सव मनाएं यथाशक्ति, तो निश्चित रूप से वो कृपा जो है प्राप्त होगी और निष्ठा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगा। तो इस तरह से ये चैतन्य महाप्रभु की जो सारी कृपा है, ये हमको मिला श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु केवल एक सेट जगाई माधाई, एक सेट का उद्धार किया उन्होंने। ये दोनों सेट थे ना, वो सेट दोसा जैसा, दोनों साथ साथ में रहते थे सेट, तो ये एक सेट का उद्धार किया। पर नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनके जो प्रामाणिक अनुयायी हैं, वो लाखों जगाई माधाई का उद्धार कर सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु ने खुद जीव गोस्वामी को बोला भ्रमण कराते हुए नवदीप धाम का, कि एक महान सेनापति भक्त आएगा चैतन्य महाप्रभु का, और पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की जो सेवा है वो और संदेश है वो प्रकाशित करेगा, और अभी कोई संदेह नहीं है हमारे हृदय में कि वो कौन है। ऑब्जेक्टिवली देखे तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये उपलब्ध हुआ है। तो आज की जीनी जो कृतज्ञता है, अगर जगाई महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के उद्धार, जगाई माधाई का सब समझ रहे हैं, तो ये कृपा एक व्यक्ति पे यश जाता है, श्रील प्रभुपाद जी और उनके प्रामाणिक अनुयायी जो उनके संदेश को पूरे विश्व में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का ये जो सुबह का कार्यक्रम है, उसकी समाप्ति श्रील प्रभुपाद जी के 10 मिनट गुरु पूजा करेंगे। गुरु पूजा के बाद इस तरह से हमारा कृतज्ञता प्रकट करेंगे, और उसके बाद 12 बजे, जिन लोगों का 12 बज रहा है वो आराम से 12 घूंट या 12 ग्लास शरबत पी सकते हैं। अभी जो अमृत है इसका पान किया, पर ये जीवा के लिए उतना नहीं, कान के लिए अमृत था, जीवा के लिए भी थोड़ा अमृत चाहिए, वो भी उसका भी पान करेंगे। श्री नित्याय गौरचंद्र की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नित्याय गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।